नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, भारत में आज से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया है। अब कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी और कुछ के दाम पहले के मुकाबले थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन जीएसटी को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं और सरकार के दावे वो कितने सही कितने गलत हैं, चर्चा होगी तमाम पहलुओं पर। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं 1811 7000 और 1811 7001। एक बार फिर से नंबर नोट करें 1811 7000 और 1811 7001। स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार, स्वागत आपका और स्वागत हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए सुनते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली को, जो जीएसटी के बारे में कुछ कह रहे हैं।
जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स है, 23 सेस हैं, उन सब को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना, ये इसकी विशेषता है। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट और चुंगी नाकाओं के ऊपर ट्रकों की भीड़ वो समाप्त होगी और एक प्रकार से सिंगल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का पूरे देश के अंदर इसके बाद होगा।
ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली और अब सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को।
जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है, जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है, जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है।
प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स है। प्रोफेसर अरुण कुमार सरल शब्दों में बीबीसी के श्रोताओं को बताएं कि जीएसटी है क्या और ये कितना अच्छा और कितना सरल है जैसा कि सरकार दावा कर रही है।
देखिए, जीएसटी में जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा, सारे अप्रत्यक्ष कर जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस उनको एक जगह ला दिया गया है। ये तो एक सिंप्लीफिकेशन है जिसकी वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इसमें होता क्या है कि आप वैल्यू एडेड टैक्स इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, तो ये इनपुट और आउटपुट के ही चक्कर में जो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपको जो छोटा उद्योग है, जो आपका छोटा ट्रेडर है, उसको इनपुट का पता नहीं होता है, उसको आउटपुट का जो अलग अलग वो पता नहीं होता है, तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। दूसरा, ये कंप्यूटराइज्ड होगा सारा सिस्टम, अगर कंप्यूटराइज नहीं होता है तो ये लागू नहीं हो सकता है, और कंप्यूटराइजेशन में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सामने आ रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है ट्रेडर्स से और बाकी जो छोटे उद्योग वगैरह हैं उससे। तो मेरा मानना है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जहाँ पे एक साथ सब टैक्स लाए जा रहे हैं वो एक अहम चीज़ है।
इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाज़ार की बात भी हो रही है, तो ये इसमें जीरो के अलावा चार टैक्स के स्लैब दर भी बताई गई हैं, तो ये एक टैक्स कैसे हुआ जिसमें चार अलग अलग दर से टैक्स लग रहा है?
नहीं, इसमें एक टैक्स का मतलब कि एक चीज़ पे एक ही टैक्स लगेगा सारे देश में। अभी तक क्या होता था कि हर जो प्रांत होता था वो अपना टैक्स अलग निर्धारित करता था, तो आपने अगर कार खरीदी तो हरियाणा में टैक्स कुछ और होगा, यूपी में कुछ और होगा, दिल्ली में कुछ और होगा, तो इसलिए जो टैक्स है कार पे अब वो सारे प्रांतों में एक ही होगा, उस सेंस में एक टैक्स है। लेकिन ये मेरा मानना है थोड़ा हाइप ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि हमारा देश एक देश नहीं था, हाँ, या अभी जो सारे टैक्स रेट एक हो जाएंगे तो उससे एक देश हो जाएगा, ये थोड़ा हाइप की बात है। पर ये बात सही है कि जब एक ही चीज़ पे एक टैक्स लगेगा, यहाँ पे जो आपने सवाल किया कि जब चार या पांच रेट हो जाएंगे और एक सेस लगा दें तो छह रेट हो जाएंगे, वो एक कॉम्प्लिकेशन की बात है जिससे कि ये सरकार कह रही है कि शायद धीरे धीरे आके हम दो या तीन रेट पर आ जाएंगे।
और इस समय 1811 7000 और 1811 102 7001 पर कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
जी
कौन श्रोता बोल रहे हैं?
सर मैं भी रजा बोल रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा से, एक छोटा सा गाँव है नौगांव, यहाँ से बोल रहा हूँ।
बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, रखें अपनी बात।
सर मेरा तो कहना यही है, मैं तो आपका प्रोग्राम 45 साल से सुन रहा हूँ लगातार, लगभग 40 साल हो गए, लेकिन मैं आज पहली बार, बड़ा अच्छा टॉपिक रहा आपका ये, और एक और लगती रहती है। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, हमारे इनके इन्होंने जो भी किया देश में बढ़िया ही किया है, हम इनके किसी काम में कोई यही नहीं कह सकते कि इन्होंने कुछ गलत किया, हम तो इनकी बात को सिर आंखों पर रखते हैं, ये जो भी कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, करते रहे बस, हम तो यही, बस हमारा यही कहना है, और कुछ इसमें कोई हमने कमी नहीं निकालनी, कुछ और ज्यादा कहना भी नहीं।
उत्तर प्रदेश से एक श्रोता थे। इससे पहले कि हम और श्रोताओं से जुड़े, प्रोफेसर साहब, लखनऊ, भोपाल, वाराणसी जैसे शहरों की तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर जीएसटी लागू होने का जश्न मनाया गया है, लेकिन एक और तस्वीर देखने को मिली है जहां पर व्यापारी क्रमिक रूप से भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं, कहीं पर ट्रेन रोक रहे हैं, कहीं बाजार बंद कर रहे हैं, तो ये विरोध की वजह क्या है? एक हिस्सा सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, और दूसरा व्यापारियों का वर्ग विरोध कर रहा है, तो ये अंतर विरोध है कहाँ पर?
मुझे लगता है कि देखिए, क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम समझें कि जीएसटी जो है वो डिज़ाइन क्या है उसका। उसका डिज़ाइन है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री को वो मदद करता है, लेकिन हमारे देश में तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री है, और उनकी सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, और क्योंकि ये टैक्स डिज़ाइन किया गया है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, तो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इससे धक्का लगने वाला है। जो छोटा ट्रेडर है, जो मझौला ट्रेडर है, उसको धक्का लगने वाला है, वो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जिसको फ़ायदा होगा, वो इसको बेनिफिट मांग रहे हैं, वो इसको सपोर्ट में आएंगे सामने। तो इसलिए ये जो हमारे देश में, क्योंकि बहुत ही हेट्रोजीनस देश है, बहुत ही अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए हो सकता है किसी चीज़ का फ़ायदा हो, किसी का नुकसान हो, किसको फ़ायदा है किसको नुकसान हो, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे।
यहाँ पर एक तथ्य हम आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 1 जुलाई से यानी आज से जीएसटी लागू नहीं हो सका है। राज्य विधानसभा ने इस पर विचार करने के लिए सोमवार को विशेष सत्र बुलाया है। और इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
हेलो
जी,
हेलो सर,
जी जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
जीएसटी के बारे में हम समझना चाहते हैं सर, जीएसटी
कहाँ से बोल रहे हैं आप?
गाँव है ललवावाड़ी, चौकी हाट, अररिया बिहार।
अररिया बिहार से जीएसटी के बारे में क्या समझना चाहते हैं आप?
कृषि क्षेत्र में सर क्या फायदा मिलेगा या घाटा होगा?
अच्छा अच्छा, आपकी बात हम समझे। प्रोफेसर साहब, ये अररिया बिहार से एक श्रोता थे, जानना चाहते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में किसानों की बात की जाए तो ये जीएसटी के आने से उन्हें किस तरह का फायदा होगा, लाभ होगा?
देखिए, जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उन पे तो जीएसटी लागू नहीं है, आपने गेहूं है, चावल है, इन सब पे नहीं है, लेकिन जो इनपुट्स हैं जैसे फर्टिलाइज़र है, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह है, वहाँ पे टैक्स लगेगा, तो जो कॉस्ट है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, और इसका बाकी अगर प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता तो ज़रूर जो फ़ायदा होता, पर अभी कोई ऐसा ना खास नुकसान है ना कुछ खास फ़ायदा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से थोड़ा नुकसान होने की संभावना है।
इससे पहले कि हम टोल फ्री नंबर पर अगले कॉलर से बात करें, फेसबुक पर, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर शकील शेख ने फेसबुक पर ये सवाल पूछा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया, क्यों?
देखिए, ऐसा है, पेट्रोल और डीजल और जो बाकी पेट्रो गुड्स हैं जिनको कहते हैं, उनसे राज्य बहुत ज़्यादा अपना राजस्व उठाते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स उठाते हैं, तो उनको लगता है कि ये टैक्स अगर जो जीएसटी के अंदर आ गया तो उनको जो टैक्स कम मिलेगा, और वो सोचते हैं कि जब उनको टैक्स की ज़रूरत होगी तो इस टैक्स के द्वारा वो और ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि राज्यों को ये डर है कि शायद टैक्स मिलना कम हो जाए तो सेंटर उसको कॉम्पेंसेट करेगा, पर सेंटर कितना कॉम्पेंसेट करेगा अभी पता नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है यहाँ पे अगर हमारी ऑटोनमी रहेगी तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। और जो आपने कहा कश्मीर के बारे में, तो यहाँ पे एक जो सवाल उठता है कि हमारा जो देश है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि राज्य जो हैं उनकी अपनी एक स्वायत्तता है विद इन द ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये जो जीएसटी है वो स्वायत्तता को एक तरह से ख़त्म कर रहा है। पर आप ये देखिए कि जो जैसे हिमाचल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तमिलनाडु की नहीं है, जो आसाम है उसकी रिक्वायरमेंट वो नहीं है जो गुजरात की है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर था उसमें हर राज्य को ये मौका था कि वो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो अपने तौर पर पूरी करे। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, इस तरह फिस्कल उसकी, ये एक जो सारा ये कही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आते हुए ये बात ख़त्म हो रही है। दूसरी जो सवाल उठता है जो इसमें जो फेडरलिज्म की, कि एक तीसरा टीयर भी हमारे देश में लोकल बॉडी का, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली का है, बम्बई का है, पटना का है, कलकत्ता का है, अब यहाँ पर ऑक्ट्रॉय ख़त्म हो जा रहा है, एंट्री टैक्स ख़त्म हो जा रहा है, जो उनका एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, अब उसके लिए क्या जो प्रावधान रखा है वो अभी पता नहीं है। तो इसलिए जो कश्मीर की बात है उसको आप बड़े फिस्कल फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर से जोड़ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि उनका तो एक स्पेशल स्टेटस है और फिर फिस्कल फेडरलिज्म, वो दो बातें उठा रहे हैं। यहाँ पे फिस्कल फेडरलिज्म की बात है वो तो लागू होती है सारे देश में।
चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
मैं मोहम्मद शफी जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ जी।
मोहम्मद शफी साहब कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
सर बात ये है कि ये इलेक्शन का एक मुहिम बनाने के लिए और वोट हासिल करने के लिए सब कुछ हो रहा, लेकिन गरीब तक या जितने व्यापारी हैं वो कितने रो रहे हैं, कोई चीज का फायदा नहीं है, टोटल कोई चीज़। ये आपने वोटिंग बनाने के लिए और एक दोबारा गवर्नमेंट लाने के लिए स्टेटू में कर रहे हैं, आने वाला जो इलेक्शन होगा 2 साल के बाद उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं। इससे पहले कौन सा काम किया इन्होंने जो हमें बताएंगे?
शफी साहब आप जम्मू कश्मीर के बारे में बात करिए, वहाँ पर अभी GST लागू नहीं हुआ है, तो कैसे देख रहे हैं इस समय आप बाजार में, मार्केट में, खरीद फरोख्त में आम तौर पर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लोग कैसे समझ रहे हैं इसको?
लोग जनाब बिल्कुल लोग यही कह रहे हैं ये बिल्कुल ढोंग है, कोई भी इसका फायदा नहीं होगा जम्मू कश्मीर को। पहला क्या फायदा हुआ, आप फायदा होगा, ये तो इलेक्शन के लिए ढोंग बचा रहे हैं। कोई दुनिया इस पर मतमयन नहीं है, हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर के लोग कोई मतमयन नहीं है कि ये जो फायदे की चीज है, कोई फायदे की चीज नहीं।
ये जम्मू कश्मीर से एक श्रोता थे मोहम्मद शफी, इन्होंने अपना नाम बताया था। कार्यक्रम में हम चर्चा जारी रखेंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार मेरे सामने बैठे हुए हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, जिनका नाम है, जाने माने अर्थशास्त्री हैं आप जानते हैं, विवेक देबरॉय।
जी हाँ,
मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि टैक्स की अलग अलग दर एक समस्या है और ये जो GST प्रणाली जिसको जिस मौजूदा स्वरूप में लागू किया गया है ये एक समस्या है। और GST से GDP सकल घरेलू उत्पाद भी नहीं बढ़ने वाला।
जी हाँ,
तो ये सरकार के भीतर की ही एक आवाज़ है।
जी हाँ,
इसे कैसे देखते हैं आप?
उनकी बात बिल्कुल सही है। शुरू में ये सोचा गया था कि एक टैक्स रेट होगा, ज़्यादा 2 टैक्स रेट होंगे, लेकिन अभी जैसे आपने कहा 5 टैक्स रेट हैं और अगर सेस मिला दें तो 6 हो जाते हैं। तो अगर ये आइडियल टैक्स स्ट्रक्चर होता तो जो NCR की स्टडी आई थी उसमें बताया गया था कि 1-2% तक जो GDP का बढ़त हो सकती है। अब हुआ क्या है कि 2 तरह की समस्याएं आ रही हैं, कि आपने 5 जो टैक्स रेट किए हैं तो उनमें जब अब चल रहा है एक तरह से ये कि भाई कौन किस वस्तु को कहाँ रखना है और किससे कितना राजस्व उठाना है, तो एक तो ये समस्या आ रही है। दूसरा ये कि मिस क्लासिफिकेशन का चांस है कि अगर आपने जो टेक्सटाइल 1,000 रुपये से ज़्यादा का खरीदा तो उस पर 1 टैक्स रेट है, 1,000 रुपये से कम का खरीदा तो उस पर 2 टैक्स रेट है, तो अब ये मिस क्लासिफिकेशन होगा और उससे कालेधन की अर्थव्यवस्था की समस्या बनी रहेगी। तीसरी समस्या ये आएगी कि जैसे छोटे उद्योग और छोटे व्यापारी हैं उनको जो समस्या आ रही है, अगर वहाँ पे जो आपका बिजनेस ठप होता है तो उसका हमारे एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, क्योंकि छोटे जो उद्योग और छोटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ही 93% एम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पे अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट आपका जब बढ़ जाता है तो आपका प्रोडक्शन गिरेगा ना कि बढ़ेगा। तो इस माने में जो विवेक देबरॉय कह रहे हैं वो एक आशंका जो जारी कर रहे हैं वो सही है।
फेसबुक पर एक हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, BBCHindi.com के पाठक और रेडियो के श्रोता, उनका नाम है इंदर गोलूवाला। वो ये सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार ने वाइन पर, शराब पर, इसे GST के दायरे में लिया है, नहीं लिया है, लिया है तो क्या और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया?
जी हाँ, नहीं लिया है, अल्कोहल को अभी इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि वो भी एक ऐसा है जहाँ से कि स्टेट्स जो काफ़ी रेवेन्यू उठाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि रियल एस्टेट को बाहर रखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी को बाहर रखा गया है, अल्कोहल को बाहर रखा गया है और पेट्रोलियम ग्रुप्स को, ये जो हैं जहाँ पे कि जो स्टेट्स को लगता है कि उनको काफ़ी रेवेन्यू मिलता है इसलिए उसको बाहर रखा गया है।
और इस समय 1811-7000 ही हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इस समय कौन श्रोता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? हेलो, जी कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
जी मैं मोहम्मद गुफरान।
हम आपका नाम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। अंसारी साहब, गुफरान अंसारी साहब बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी मैं फरीदगंज जिला अररिया बिहार से बोल रहा हूँ।
अच्छा, अररिया बिहार से एक और श्रोता हमारे साथ हैं, रखें अपनी बात।
जी मेरी बात ये है कि ये जो पारित हुआ है इससे तो बिजनेसमैन को काफी परेशानी हो रही है, ये कागज पत्र का प्रोसेस कुछ लंबा हो रहा है।
ये एक और श्रोता थे हमारे प्रोफेसर साहब, ये कह रहे थे कि व्यापारियों को बिजनेसमैन को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो ये कहाँ हो रही है परेशानी और क्यों हो रही है? सरकार ने तो बड़ा इतना विशाल आयोजन किया संसद के केंद्रीय सभागार में, मतलब ये दर्शाता है कि सरकार ने बड़े पैमाने पे तैयारी की है। अभी कुछ इसी समय आप देखिए नई दिल्ली के एक स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा हुजूम है, संबोधित कर रहे हैं GST के बारे में, तो मतलब बहुत प्लानिंग करके सोच विचार की ये फैसला किया गया है। इसके बावजूद यदि लोगों को व्यापारियों को परेशानी हो रही, मतलब कहीं कुछ कमी है, गड़बड़ है?
जी हाँ, देखिए ये हिस्टोरिकली देखें तो आज 12 साल हो गए इस पर चर्चा चलते हुए, और ख़ासकर पिछले 6 साल से तो इस पर ज़्यादा ही, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे स्टेट्स के, उनकी काउंसिल बनाई गई, वहाँ पे सारे डिसीजन हुए। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आप मैंने शुरू में कहा था कि जो बड़े उद्योग और बड़े व्यापारी, उनको ध्यान में रख के ये नीति बनाई गई है। इसमें जो छोटे और जो मझौले उद्योगपति या व्यापारी हैं उनकी समस्या क्या आएगी उसको देख के नहीं बनाई गई है, और जितना विरोध हो रहा है वो सारे छोटे व्यापारी और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से, असंगठित क्षेत्र वहाँ से जो विरोध हो रहा है, क्योंकि उनको अभी पता नहीं कि ये कैसे होगा। तो जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत तैयारी करके किया है, इसमें जैसे कि अभी आपने कल देखा कि जो GSTN नेटवर्क है वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि अभी अगर आपको 2 बिलियन यानी 200 करोड़ रोज अगर आपके जब बिल्स आएंगे तो साल में आप देखिए कितने खरबों बिल आएंगे, और उसको कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होगा। और जो छोटा व्यापारी और छोटा उद्योगपति है उसके पास ना कंप्यूटर है, ना उसके पास अकाउंटेंट है, ना उसके पास ये टेक्निक है कि वो जितना रोज माल खरीद रहा है उसको जो कंप्यूटराइज करे, ये सारा बहुत बड़ा है। और जो अगर जो छोटे व्यापारी और जो इनको कॉन्फिडेंस में लिया गया होता, उनको ट्रेनिंग होती और इसके बारे में साल दो साल से पहले सोचना चाहिए था कि ये सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सोचना शुरू हुआ है पिछले 3-4 महीनों में ही। जैसे जैसे ये चर्चा हुई कि परेशानी आएगी तो फिर सरकार ने सोचना शुरू किया, और इतनी जल्दी तैयारी होती नहीं है, और खासकर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर। और आपने देखा कि पिछले साल वना क्राई आ गया था, फिर एक और जो अभी आ गया, अगर यहाँ पे वायरस अटैक होता है और जब जैसे गांव में बिजली नहीं है तो कैसे काम चलेगा? एक तरफ जो आपका अटैक हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका ये काम ना करे, तो इसलिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो इनको डील करने की जरूरत है।
चर्चा को हम जारी रखते हैं, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक स्टेडियम में GST के मुद्दे पर कुछ लोगों को, बल्कि लोग नहीं कहूंगा, स्टेडियम भरा हुआ नजर आ रहा है, संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
आप जो भी रास्ता चुने उसमें CA का मतलब होना चाहिए, चार्टर और एक्यूरेसी, कंप्लायंस और ऑथेंटिसिटी। साथियों, 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। इस वर्ष के लिए देश ने कुछ संकल्प किए हैं, नया भारत।
प्रधानमंत्री नए भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लगता है ये संबोधन अभी काफ़ी समय तक जारी रहेगा, हम वापस लौटने की कोशिश करेंगे इस पर। इस बीच ठाकुर सिंह है हमारे फेसबुक पर एक श्रोता पाठक, वो सवाल पूछ रहे हैं कि रियल इस्टेट को GST से बाहर क्यों रखा गया है?
देखिए फिर वही बात आती है, रियल इस्टेट जो है वहाँ से भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको टैक्स मिलता है, तो इसलिए जितनी भी चीज़ें बाहर रखी गई हैं सब एक तरह से कैश रिच हैं, जहाँ पे कि स्टेट्स को लगता है कि वो हमारे कब्जे में रहेगा तो जब हमें टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पर जो टैक्स बढ़ा और घटा सकते हैं, इसलिए ये 4 चीज़ें जो मैंने गिनाई थी वो बाहर रखी गई हैं। लेकिन इसका असर GST के स्ट्रक्चर पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, और इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो GST की चेन टूटेगी, GST की चेन टूटेगी तो जिस तरह से आइडियल GST की बात की जाती है वो आइडियल GST हमारे सामने नहीं आएगा।
एक और सवाल हम लेंगे बीबीसी फेसबुक पन्ने से। उससे पहले हम जिक्र कर रहे हैं, ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि जीएसटी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा टैक्स गैम्बल खेला है, जुआ खेला है, दांव लगाया है बड़ा। आपको लगता है कि वाकई इतना बड़ा दांव खेल गए प्रधानमंत्री मोदी?
बिल्कुल, वो एक जुए के दांव के जैसा ही है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे अगले 3-4 महीने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उससे अगर वो डिस्क्रेडिट हो जाता है तो उसका जो लॉन्ग टर्म असर होगा। अगर यही चीज़ ढंग से चलती रहती है तो उसका जो सरकार को फ़ायदा होगा। तो एक गैम्बल है, और उसमें अभी कोई कह नहीं सकता कि वो किस तरफ जाएगा।
मोदी सरकार जीएसटी को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बता रही है, और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री हैं यशवंत सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक साक्षात्कार दिया है उन्होंने, और उसमें वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने 1991 में जो बजट पेश किया था वो भारत का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। क्या ये इनका दावा सही है?
इनका दावा सही है, लेकिन एक और चीज़ देखी जाए तो जो सन 50 के दशक में हुआ वो देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार हुआ, जब हमारे जो सारे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको बनाया गया। तो मेरा मानना है कि वो जो सन 50 के दशक में हुआ, उसके बाद फिर सन 91 में हुआ, और फिर ये है, तो इसको ये सबसे बड़ा कहना मुझे लगता है सही नहीं होगा। और जो दिशा है सारी पॉलिसीज़ की वो सन 50 में बदली, और वो फिर सन 91 में बदली, इसलिए वो ज़्यादा बड़े हैं।
जल्दी से कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं। कौन साहब जुड़ रहे हैं इस समय हमारे साथ?
हेलो
जी, कौन साहब जुड़ रहे हैं हमसे?
सर, मैं संजय कुमार सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ।
सीतामढ़ी बिहार से संजय जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
सर, जो जीएसटी जो बिल लागू किया गया, जीएसटी टैक्स जो बढ़िया है, नरेंद्र मोदी जी ने और अरुण जेटली ने फैसला लिया है, बहुत बढ़िया है हमारे देश के लिए।
सीतामढ़ी बिहार से श्रोता थे, कह रहे थे कि बहुत अच्छा फैसला लिया है। और श्रोता हमारे साथ इस समय लाइन पर जुड़ रहे हैं।
बीबीसी
जी, बीबीसी में स्वागत है आपका, कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं सर अम्बाला से हंसराज वर्मा बोल रहा हूँ।
वर्मा जी स्वागत है।
हिस्ट्री का टीचर हूँ। क्वेश्चन बाद में पूछोगे?
नहीं नहीं, आप जल्दी से पूछ दीजिए।
हाँ, क्वेश्चन ये है जी कि जो दवाइयों पर जो है जीएसटी का कोई फर्क पड़ेगा जी? कुछ एक 35 रुपए का प्राइस वाला जो पत्ता है मेडिसिन का, और उस वो जो 10 रुपए में जो बेच देते हैं ये, तो इस पर भी जीएसटी का कोई पड़ेगा कि नहीं?
बहुत संक्षेप में प्रोफेसर साहब, दवाइयों के मामले में जीएसटी में क्या कहा गया है?
मुझे इसके बारे में खास अभी जानकारी नहीं है कि दवाइयों के बारे में टैक्स रेट में कितना फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन मैं एक जनरल में बात कहूँ तो जो एक कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मतलब कि जो पहले जितना टैक्स आ रहा था वो अब भी टैक्स आए, तो ये जो टैक्स जो हमारा स्ट्रक्चर फिक्स किया गया है वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के आधार पे फिक्स किया गया है, और ज़्यादातर चीज़ों को 15-18% के बीच में रखा गया है, और 50% चीज़ों को इससे बाहर रखा गया है, जैसे वित्त मंत्री ने बताया है। और मेरा मानना है ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट थोड़ा हाई है, इसको 10% के आसपास रखना चाहिए था, तो इससे मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन होगा, और खासकर सर्विसेज सेक्टर के जो हैं उनमें ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। लेकिन फिर जैसे कई चीज़ें टूथपेस्ट हैं, साबुन वगैरह हैं, वहाँ पे थोड़े रेट कम रखे गए हैं तो उनके दाम कम होंगे, छोटी कारों के दाम बढ़ जाएंगे, जो बड़ी कारें हैं उनके दाम कम हो जाएंगे, जितनी भी आपकी जो इंश्योरेंस है, जितना आपका बैंकिंग है, टेलीकॉम है, वहाँ पर दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन सर्विसेज पर ये है।
फेसबुक पर मंगेश तिवारी ने पूछा है कि जीएसटी से गरीब मजदूर किसानों को क्या फ़ायदा होगा, संक्षेप में?
देखिए, गरीब मजदूर और किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दाम बढ़ेंगे, उनकी पॉकेट पे जो हाथ लगेगा, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, खासकर जो असंगठित क्षेत्र में, उसका उनको नुकसान पहुँचेगा।
एक सवाल कई श्रोता और पाठक हमसे पूछ रहे हैं, वो ये कि क्या अब टैक्स चोरी बंद हो जाएगी?
नहीं, टैक्स चोरी तो बंद नहीं होगी, पर यह है, हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यापारी वर्ग है और जो उद्योगपति है वो बहुत क्लेवर होते हैं। जितने भी आप देखिए पिछले 70 साल में जो सरकारों ने जो लागू किए हैं नियम या कानून, उसका तोड़ निकाल लेते हैं, और तोड़ निकाल के वो करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें तोड़ निकालना थोड़ा कठिन होगा, उसमें हो सकता है समय लगे, पर लेकिन ये कहना है काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, वो मेरे ख्याल में सही नहीं होगा।
और इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं 8:00, और वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का शुक्रिया, और माफ़ी चाहेंगे हमेशा की तरह उन तमाम श्रोताओं से जिन्हें हम चाहकर भी कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार आप स्टूडियो में आए, चर्चा को सार्थक बनाया, बहुत शुक्रिया। अगले शनिवार फिर एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहेंगे हम। दीजिए फिलहाल इजाजत संदीप सोनी को, नमस्कार।